छायावादी कविताएं और आधुनिक काल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां। छायावाद के प्रादुर्भाव एवं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रायः विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम रहा है। इस काल के साहित्य में विलक्षण विविधता पाई जाती है। न केवल काव्य के अंतर्गत एक यथार्थवादी भौतिक दृष्टिकोण का विकास दिखाई पड़ता है, वरन गद्य साहित्य के प्रादुर्भाव एवं विभिन्न रूपों में विकास के कारण ही साहित्य हमारे ऐहिक और यथार्थ जीवन का पूर्ण रूपेण वास्तविक प्रतिबिंब बनकर उतरा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद के नवचेतन के दर्शन होते हैं और साहित्य का विविध मुखी विकास भी हुआ है। पर नवीन प्रवृत्तियों का यह आविर्भाव किसी चमत्कारी घटना के समान एकाएक नहीं, बल्कि उसके बीच उपयुक्त परिस्थितियों से पोषण पाकर अंकुरित एवं पल्लवित हो इस रूप में दिख पड़ता है। अतः यहाँ संक्षेप में तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है। राजनीतिक परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में जहाँ हम राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं, यह रीतिकाल के समाप्त होने से पहले हमारे पूरे देश में ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था और सर्वसाधारण में भले ही क्षोभ और असंतोष न हो, पर देशी राजाओं ने अभी तक विदेशी शासन को पूरे तौर पर अपनाया नहीं था। वह दासता के बंधन स्वीकार न थे और अंग्रेज उनके कुल गौरव और मर्यादा पर प्रहार करने से चूकते नहीं थे तथा नए नए कानूनों से वह जमींदारों को अपना शत्रु बनाते थे। देश का राजनीतिक पराभव भले ही हो गया, पर वैयक्तिक वीरता और वंशगत का अभाव न था। पदच्युत राजा, सामंत, नवाब व तालुकेदार का सर्वसाधारण पर प्रभाव कम न था। इस प्रकार देशवासियों के हृदय में जो विद्रोहाग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसने 1857 में विस्फोट का रूप धारण कर लिया। पहले अवश्य इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता रहा, पर अब तो हमारे नेता भी इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। हमारा साहित्य पतनोन्मुख हो श्रृंगार व विलासिता में मग्न पड़ा था और समाज सनई सनई विश्रृंखलता की ओर बढ़ रहा था। अतः सुसंगठन व शक्ति के केंद्रीकरण की यह नीति सफल न हो सकी तथा अंग्रेजों ने गोरखों व सिखों की सहायता से क्रांति का दमन करने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजों को क्रांति का दमन करने में सफलता प्राप्त अवश्य हुई, पर इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता को अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों के शासन सत्ता छीनकर भारत के शासन में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना तथा उत्तर भारत का भेद समाप्त होकर शताब्दियों बाद सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के पश्चात और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने से स्वाभाविक ही हमारे देशवासियों पर पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव पड़ा तथा अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने की ओर भी देशवासियों ने ध्यान दिया। जब जनता अधिक संख्या में शिक्षित होने लगी, अब साहित्य केवल राजभाषा की वस्तु न रह गया और वह अब सर्वसाधारण की वस्तु हो गया तथा मुद्रण यंत्र के प्रसार के फलस्वरूप सस्ती पुस्तकें भी प्रकाश में आई। साथ ही पत्र पत्रिकाओं द्वारा साहित्य में सामयिकता की भावना भी गतिशील हो उठी और जनता सरलतापूर्वक साहित्य का रसास्वादन करने लगी। पर चूंकि अंग्रेजों का राज्य व्यापारी वर्ग का राज्य था, अतः समाज में वैश्य वर्ग और वैश्यावृत्ति की प्रभुता स्थापित हो चली। पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के कारण देश में सुधारवादी भावनाएं पुनः बलवती हो उठी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की भावना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होते ही पुनः प्रबल हो उठी। जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, वही कालांतर में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए प्रयत्न करने वाली संस्था बनी। यूँ तो बंग भंग के पूर्व कांग्रेस में नरम दल का ही बहुमत था और प्रस्ताव पास करने तथा अपनी मांगें दोहराने के अतिरिक्त उसने पहले बहुत दिनों तक कोई सक्रिय प्रयास न किया। सरकारी नौकरियों में अंग्रेज के समान भारतीयों के भी समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त हों, ICS की परीक्षा लंदन में न होकर भारत में भी हुआ करे आदि मांगे उन दिनों कांग्रेस दोहराई थी और अंग्रेज शासकी उसकी मांग ठुकरा दिया करते थे। बंग भंग ने देश में उग्र राजनीतिक चेतना का संचार किया और स्वाधीनता आंदोलन को नया मोड़ प्राप्त हुआ। साथ ही एक छोटे से एशियाई देश जापान द्वारा विशाल रूस की पराजय से हमारे देशवासियों में आत्मविश्वास व नव जागरण की लहर दौड़ गई और राजनीतिक परिवर्तन की मांग की जाने लगी। एक ओर देश में आतंकवाद व हिंसात्मक प्रवृत्तियों के उत्पन्न होने का अवसर मिला और दूसरी ओर शांतिपूर्ण ढंग से देश को स्वतंत्र करने की भावना भी बलवती हो उठी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस समय संपूर्ण दुनिया के साथ साथ इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और जनता यह समझ गई कि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए रखना ही चाहते हैं, स्वयं अंग्रेज शासकों ने भी देश के दमन में कोई कसर न रखी। पर इसी बीच भारत के राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ और उन्होंने भारत की काया ही बदल दी। इधर सामाजिक जीवन में सर्वतोन्मुख क्रांति हुई और राष्ट्रीय आशा व जागृति का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचने से शताब्दियों को शोषित व पीड़ित जनता को नवीन बल प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर मध्यवर्ग व निम्न वर्ग भी आकृष्ट हुआ और कांग्रेस अब केवल उच्च वर्ग की संस्था न रहकर संपूर्ण देश की प्रतिनिधि राष्ट्रीय संस्था कहलाने लगी। अंग्रेज सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व तक कुछ वैधानिक व शासन संबंधी सुधार अवश्य किए, पर इन सुधारों से देश को कुछ विशेष लाभ न हो सका। अतः राष्ट्रीय आंदोलन शांत न हुआ और सन 1942 में पुनः देश में एक भीषण क्रांति हुई, जिसने अंग्रेजों को यह संकेत कर दिया कि देश अब स्वतंत्र होने के लिए इच्छुक है। इस राजनीतिक देश की दशा का सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा और इस दिशा में सुधारों की ओर भी ध्यान गया। सामाजिक व्यवस्था। अंग्रेज शासन की स्थापना के कारण हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत जटिल व अव्यवस्थित हो गई थी और हिंदू समाज में अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों व कुप्रथाओं का प्रचलन था। जन सामान्य प्राचीन परंपराओं से बुरी तरह चिपटा हुआ था और अपरिवर्तनवादी पुरोहित वर्ग अपने हाथ में सामाजिक नेतृत्व रखकर महत्ता बनाए रखना चाहता था। साथ ही बाह्याचार्यों व बाह्य उपकरणों ने धर्म की वास्तविकता का स्वरूप विलुप्त कर रूढ़ियों व परंपराओं में अंधानुकरण को बढ़ावा दे रखा था। अब प्राचीन परंपरा के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण की प्रखरता के कारण सामाजिक सुधारों की भावना को सुअवसर मिला। एक ओर बंगाल में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज ने और दूसरी ओर उत्तर भारत में स्वामी दयानंद के आर्य समाज ने देशवासियों का अज्ञान अंधकार दूर कर अपनी संस्कृति के प्रति हीनता की भावना बनाए रखने की प्रवृत्ति का मूल उच्छेद किया। यों तो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के कारण हमारे देशवासियों में ज्ञान व सत्य का प्रचार करने की भावना पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी और ज्यों ज्यों आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ त्यों त्यों समाज में विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, अछूतोद्धार आदि अनेक समाज सुधारों को प्रसार का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार समाज में दो वर्ग बन गए, जिनमें से एक सामाजिक सुधार का प्रबल पक्षपाती और दूसरा प्राचीनता का पोषक होने के कारण सामाजिक परिवर्तनवादियों के रास्ते में पग पग बाधा डालने वाला था। इतना होते हुए भी हमारे देश में सामाजिक सुधारों के लिए प्रयत्नशील न जाने कितनी छोटी बड़ी संस्थाओं का उद्भव और विकास हुआ, जो कि सामाजिक सुधारों व नवीन विश्वासों के लिए निरंतर संघर्ष करती रही। आर्थिक दशा, यूं तो अंग्रेजी शासन का प्रारंभ होते ही देश की आर्थिक दशा बिगड़ने लगी थी। औपनिवेशिक शोषण की प्रबलता के फलस्वरूप देशवासी दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे थे। सच तो यह है कि मशीन युग प्रारंभ होने के पूर्व हमारे किसान दूसरों के मोहताज न थे और भारत का प्रत्येक ग्राम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न कर लेता था। अंग्रेजी पूंजीवाद की माया के नीचे देश पूंजीवाद को पनपने का अवसर भी प्राप्त हुआ। साथ ही अंग्रेजी साम्राज्यवादी आर्थिक नीति ने देश की अधिकांश जनसंख्या की कृषि पर निर्भर कर गांव की अर्थनीति में जमींदारों, महाजनों और व्यापारियों का कुचक्र होने लगा, क्योंकि उनके स्वार्थ एक समान ही थे। स्वयं अंग्रेज भारतवासियों से सस्ती कीमत पर कच्चा माल खरीद कर तैयार माल महंगे दामों में बेचने लगे। अतः देशवासियों का अधिकांश धन विदेश जाने लगा और मशीन युग के दाता दास्ता के बंधन और अधिक पेचीदा हो गए और गुलामों पर शारीरिक बंधनों की अपेक्षा आर्थिक शोषण की यह प्रक्रिया उतनी सूक्ष्म व गहरी थी कि भारत पर विदेशी पूंजीवाद का शिकंजा अधिकाधिक कसता जा रहा था। इसके साथ देशी पूंजीवाद भी देश को निचोड़ने में कसर नहीं करता था। अतएव आर्थिक विषमता ने समाज में वर्ग भेद की वृद्धि की और समस्त सामाजिक आंदोलनों, हलचलों, असंगतियों व विरोधों का प्रतिबिंब हमारे साहित्य में भी झलकने लगा। सांस्कृतिक एवं धार्मिक दशा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश होने के कारण हमारे देश में सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए और विचार स्वातंत्र ने नवीन मान्यताओं की स्वाधीनता को प्रोत्साहन मिला। यद्यपि संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन प्राप्त होने से प्राचीन संस्कृति की उपेक्षा ही हुई, पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने से अनेक नवीन विषयों का अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ। देशी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलते हुए भी पाश्चात्य चिंतन विधि ने देशवासियों को प्रभावित किया, पर अंग्रेज हमारी प्राचीन संस्कृति की अधिक दिनों तक उपेक्षा न कर सके। सन 1944 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, पर 1857 में कर्नल कर्निघम ने अध्यवसाय से पुरातत्व विभाग की स्थापना होने पर राजगृह, तक्षशिला, बनारस, पहाड़पुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों के खुदाई से भारत के प्राचीन गौरव का परिचय प्राप्त मिला। अब प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा में होने लगे और यूरोप वासियों को हमारे प्राचीन ज्ञान भंडार का परिचय भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारे देशवासियों की हीनता की भावना सनई सनई दूर होने लगी और भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अनुशीलन की ओर ध्यान गया। साथ ही पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क से भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार वैज्ञानिक ढंग से होने लगा, लेकिन दोनों में कुछ ऐसा मौलिक भेद था कि शीघ्र ही दोनों में समन्वय न हो पाया। हमारी धार्मिक भावना तो रीतकाल में ही औनत की ओर अग्रसर हो रही थी और संतों के अनुसार आंदोलन की गति मंद पड़ गई थी तथा श्रृंगार समन्वित कृष्ण भक्त की ओर आकर्षण बढ़ रहा था। इधर देश के दक्षिण व पूर्व में सनई सनई ईसाई धर्म निम्न वर्ग की जनता में प्रविष्ट हो रहा था और स्वयं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्तिकालीन पौराणिकता, इस्लाम व बहुत कुछ अंशों से ईसाई धर्म से प्रभावित था। अतः जनता में निरीश्वरवाद की भावना भी बढ़ रही थी, पर इतना होते हुए भी आधुनिक युग के धार्मिक जगत में कोई नवीन प्रभावशाली आंदोलन नहीं हुआ। देश में मार्क्सवादी जीवन दर्शन का प्रभाव पड़ने लगा, पर ईश्वर और धर्म के प्रति उपेक्षा भी दिखाई जाने लगी, पर समस्त रूप से विचार करने पर आधुनिक युग वैचारिक अराजकता का युग ही कहा जाएगा, जिसमें अंध अश्रद्धा की भावना जनमानस में बढ़ती रही। साथ ही हमारा जीवन भी आदर्श से रहित ही था और सामान्य हिंदू जिस वैदिक साहित्य को अपने धार्मिक जीवन का मूल मानता था उससे वह सर्वथा अनभिज्ञ ही था। सामाजिक विषमता व वर्ग भेद आदि न केवल व्यक्ति के सैद्धांतिक स्तर को नीचे गिरा दिया था बल्कि उसके खंडित व्यक्तित्व के कारण और संगठित चर्चा के अभाव में धार्मिक विश्रृंखलता भी हमारे देश में विद्यमान थी। निसंदेह हमारे समाज पर भक्ति भावना की गहरी छाप थी पर भक्तिकालीन आंदोलन किसी व्यापकता का अभाव था और धार्मिक जीवन की सजीवता व चेतनता कहाँ तिरोहित हो गई थी। समाज की धार्मिक विश्रृंखलता के होते हुए भी आधुनिक काल में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राधा स्वामी संप्रदाय, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि धार्मिक आंदोलनों ने कुछ न कुछ जागृति अवश्य उत्पन्न हुई और इसमें से आर्य समाज ही धार्मिक क्षेत्र की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में भी अधिक सफल हुआ। उसने धार्मिक जगत में वैदिक एक ईश्वरवाद के प्रति कुछ रुचि अवश्य उत्पन्न की पर वह समाज उच्च वर्ग को ही अधिक प्रभावित कर पाया और निम्न वर्ग पर उसका कोई विशेष प्रभाव न पड़ सका। साथ ही कुछ राजनीतिक कारणों से एक प्रसारणशील नीति दर्शन का रूप लेकर संप्रदाय का ही रूप उसने ग्रहण किया पर अन्य धार्मिक संप्रदायों या आंदोलन में यह दोष नहीं है। राधा स्वामी संप्रदाय तो बहुत कुछ अंशों में संत मत के ही समान है और उसमें भी गुरु महिमा, योगाभ्यास, चित्त शुद्धि आदि सिद्धांत ही मूलतः है। अतः उसके संतत्व के स्वरूप को आधुनिक बताते हुए लौकिक उन्नति पर ध्यान दिया है। इतना होते हुए भी यह मानना ही होगा कि आधुनिक काल में भी हमारे देश में सनातन धर्म को ही प्रमुखता है और भले ही उतना प्रभावशाली न हो प्रसार उसका ही अधिक है। वस्तुतः हमारे देश में कोई भी धार्मिक आंदोलन उन्नत सामाजिक के आधार की कल्पना के बिना प्रगति नहीं कर सकता। स्वयं गांधी जी का भी अपने विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन को धर्म व नैतिकता का आवरण प्रदान करते समय हरिजन उद्धार, जात पात उन्मूलन, नारी स्वतंत्रता आदि उन्नत सामाजिकता के तत्वों को अपने नीति दर्शन में प्रमुख स्थान देना पड़ा लेकिन जन साधारण में पौराणिक अवतारों व देवताओं की मान्यता यथापूर्व रही। गतानुगतिक कर्म सिद्धांत व पुनर्जन्म आदि पर विश्वास किया जाता रहा। इस प्रकार रुचिपूर्वक धार्मिक आयोजन मनाए जाते रहे और रामकृष्ण के लोकादर्शों के प्रति सबका आकर्षण आज भी बना हुआ है। छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। उक्त परिस्थितियों में हिंदी साहित्य की सभी दिशाओं में स्वाभाविक ही परिवर्तन हुए और हिंदी साहित्य के विविध मुखी उन्नति भी हुई तथा गद्य विकास हो जाने से कहानी, उपन्यास, नाटक समीक्षा, एकांकी, रेखाचित्र, जीवन चरित्र, रिपोर्टाज आदि सभी साहित्य रूपों का प्रचलन भी हुआ। सामान्यतः आधुनिक काल की विशेषताएं इस प्रकार दिया जा सकता है। पहला, आधुनिक काल में गद्य के साथ ही पद्य का भी विकास हुआ पर उससे गद्य के विकास में कोई अवरोध न आया। इससे पूर्व हमारे साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित हुआ था और सभी तक साहित्य पद का भी पर्यावाची था पर गद्य का आविर्भाव एवं विकास युग की विशेषता है। आधुनिक काल की इसी विशेषता को लक्ष्य कर आलोचक भी इसे गद्य काल कहते हैं। दूसरा, आधुनिक काल में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन भाषा संबंधी दृष्टिगोचर होता है और खड़ी बोली के विकास की दृष्टि से भी यह काल अपना विशेष महत्व रखता है। खड़ी बोली का क्षेत्र व्यापक होने के कारण उसमें अंग्रेजी व उर्दू का समावेश भी हुआ है। खड़ी बोली के शब्द भंडार की समृद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आधुनिक काल की प्रमुख भावना राजनीतिक चेतना होने के कारण इस काल की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना की है और हमारे कवियों ने गरीब किसानों व मजदूरों की चर्चा की, विद्यार्थी समाज के उत्थान पर भी ध्यान दिया तथा नवयुवकों में देशभक्ति का संचार भी किया। साथ ही मुस्लिम हिंदू एकता की ओर भी कवियों का ध्यान गया और साहित्य में गांधी जी की अहिंसात्मक राष्ट्र प्रेम का सिद्धांत भी प्रध्वनित हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीयता का विश्व बंधुत्व के स्वर भी मुखरित हुए। चौथा, आधुनिक कालीन साहित्य में जनवादी विचारों की प्रधानता प्राप्त हुई है और वह जनवादी विचारों से समन्वित हो यथार्थ की भूमिका पर विकसित हो रहा है। पांचवा, आधुनिक काल में शैली परिवर्तन की विशेषता भी दिख पड़ती है और एक ओर तो गद्य शैली से विकसित होने से नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, गद्य काव्य, जीवन चरित्र, आत्मकथा व आदि विधाएं विकसित हुई तथा दूसरी ओर पद्य शैली में भी विविध मुखी परिवर्तन हुआ है। आधुनिक कविता में इतिवृत्तात्मकता के साथ साथ छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी आदि काव्य शैलियाँ भी विकसित हुई हैं। आधुनिक काल में छठवां, आधुनिक काल में श्रृंगार भावना का सुष्ट व स्वस्थ स्वरूप विकसित हुआ है। नारी वासना की मूर्ति न रहकर सौंदर्यशालिनी व शक्ति विधायनी भी है, अतः हमारा आधुनिक साहित्य सौंदर्यानुभूति का साहित्य ही है। साथ ही अब पाप पुण्य की परिभाषा भी परिवर्तन हो गई है और साहित्य पर फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों की प्रधानता दिख पड़ती है। सातवां, आधुनिक काल में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण करने की ओर भी कवियों का ध्यान गया है और प्रकृति सौंदर्य के स्वतंत्र काव्य भी प्राप्त होते हैं। मानवीकरण आदि सर्वथा नवीन प्रणालियों के विशद उदाहरण भी मिलते हैं। आधुनिक कालीन साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद, पलायनवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद और प्रयोगवाद आदि विविध वादों की प्रधानता भी है। इतना ही नहीं, अब तो अकवितावाद, नकेनवाद आदि सर्वथा नवीनवाद भी काव्य जगत में प्रचलित हो गए हैं। उक्त विचारधाराओं के फलस्वरूप एक ओर तो बौद्धिक परिवर्तन हुआ तो दूसरी ओर साहित्यकारों की संख्या भी बढ़ी। हमारे आधुनिक साहित्य पर आंग्ल प्रभाव भी पड़ा है और यह प्रभाव अत्यंत व्यापक व बहुमुखी है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने से हमारा पाश्चात्य साहित्य से संपर्क भी स्थापित हुआ और गद्य के विविध रूपी विकास में पाश्चात्य साहित्य का अनुकरण भी हुआ। साथ ही आधुनिक काल में जो विविध वाद दिखाई पड़ते हैं उस पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। नौवां, आधुनिक काल में विधवा विवाह, बुढ़ापा, विध विडंबना, गोरक्षा, क्रोध, बातचीत, करुणा, ईर्ष्या, भिखारी, मिल का भोपू, किसान का घर, गली, कूड़ा करकट, कुकुर मुत्ता, धोबियों का नाच, रेल का इंजन आदि साधारण विषयों पर भी रचनाएं की गई और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार की विषय व्यापकता व विषय वैविधता इसके भी अन्य काल में साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि छायावाद के आधुनिक काल में हिंदी की बहुमुखी प्रगति हुई है और यदि हम कहें कि आधुनिक काल का साहित्य माध्यमिक काल के साहित्य की अपेक्षा अधिक संपन्न व आशाजनक है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भैया एक हेडिंग की रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको सेव कर दें।